आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्लास 10th के साइंस का 13th चैप्टर है और आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर में जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने बात की थी कि किस तरीके से एक कंडक्टर जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और उस कंडक्टर के थ्रू करंट पास कर रहा है, तो ऐसे कंडक्टर को जिससे करंट पास कर रहा है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो कंडक्टर कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वहाँ पर आपने यहाँ पर एक्टिविटी की थी, एक्टिविटी 13.7, जिसमें आपने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की जगह पर आपने यहाँ पे मैग्नेट यूज़ किया था जिससे आपने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करवाई थी और करंट आपने पास करवाया था एक एल्युमिनियम रॉड में। तो आपने ये देखा था कि जब करंट पास हुई थी एल्युमिनियम रॉड में और वहाँ पर मैग्नेट भी मौजूद था तो आपकी एल्युमिनियम रॉड में डिफ्लेक्शन हुई थी। तो उसी से आपको पता चला था कि आपके एल्युमिनियम रॉड पर ज़रूर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करवाया जा रहा है बाय दी मैग्नेटिक फील्ड, और ये सिर्फ तभी होता है जब हम किसी कंडक्टर को जिसमें करंट पास हो रहा हो उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, प्रेजेंस में रखें। इस एक्टिविटी के थ्रू आपने ये देखा था कि अगर जिस कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रहा है उसकी करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो फोर्स पहले सिचुएशन में जो डायरेक्शन में था उसके रिवर्स डायरेक्शन में अब फोर्स दिखता है। फर्स्ट सिचुएशन में आपको कुछ फोर्स की डायरेक्शन दिखी होगी, आपको कुछ फोर्स भी दिखा होगा, और जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो फोर्स की जो दिशा होगी वो भी बदल जाएगी। उसके बाद दूसरी बात हमने की थी कि करंट की दिशा बदलने से फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है, साथ के साथ आप अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदलें और करंट की डायरेक्शन को सेम रखें, पहले की सिचुएशन की तरह ही रखें, लेकिन इस बार आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बदल दें तो सेकेंड सिचुएशन में जिसमें आपने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया है, बदल दिया है, ऑपोजिट कर दिया है, तो ऐसे केस में भी फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन पर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर दोनों पर ही डिपेंड करती है। उसके बाद हमने बात की थी कि किस तरीके से हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके पता लगा सकते हैं कि अगर हमें मालूम हो करंट की क्या डायरेक्शन है और हमें मालूम हो कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो हम ये बता सकते हैं कि जिस कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो रहा है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी, ये हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करके बता सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स होती है जो कंडक्टर पर एक्सपीरियंस कंडक्टर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड यूज करना है, आपको अपनी थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को स्ट्रेच आउट करना है कुछ इस तरीके से कि ये तीनों की तीनों जो आपकी फिंगर्स हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। फोर फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और फोर फिंगर और थंब के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए और थंब और मिडिल फिंगर के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। दोनों फिंगर्स और थंब ये तीनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो ऐसे में आपकी जो मिडिल फिंगर होगी वो पॉइंट करेगी करंट की डायरेक्शन में और आपकी जो फोर फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, और ऐसी सिचुएशन में आपकी जो थंब होगी वो फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि एक करंट जिस कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है उसके अंदर मान लो आपने करंट की डायरेक्शन को मिडिल फिंगर से शो कर रहे हैं आप और फोर फिंगर से आप ये शो कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि थंब, योर थंब विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और यहाँ पर पहले से ही जो अजम्पशन रखी जा रही है वो ये रखी जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर एंड फोर्स ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस तरीके से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने पढ़ा था। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था। इलेक्ट्रिक मोटर में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या फिर लूप को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और उस करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर लूप के थ्रू करंट पास हो रही है तो आपकी वो लूप या फिर वो कंडक्टर उसके ऊपर कुछ फोर्स एग्जर्ट होगी बाय दी मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एग्जर्ट होगी तो आपका जो लूप होगा इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। तो इलेक्ट्रिक मोटर में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक मोटर का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, अपने फैंस में करते हैं या फिर वॉशिंग मशीन्स में करते हैं या फिर हमारे घर की जो मिक्सी ग्राइंडर होती है उसमें करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर में भी करते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीजें जो रोटेट करती है, इन सभी में हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं। और यहाँ पर आपने जो अलग अलग पार्ट पढ़े थे वो क्या कहते हैं, वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स था, आपने जो पढ़ा था वहां पर आपने मैग्नेट यूज किया था। लेकिन कमर्शियल जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं वहां पर जो मैग्नेट्स होते हैं वो यूज नहीं किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराने के लिए। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि जो रोटेट हो रहा था वो हमने एक कंडक्टिंग वायर रखी थी जिसके थ्रू करंट पास हो रही थी, करंट आप बिजली के सोर्स यूज कर सकते हैं जिससे करंट पास कराएंगे। साथ में हमने देखा था कि यहाँ पर दो स्प्लिट रिंग्स थी, हाफ हाफ रिंग्स थी, दो ऐसी आधी आधी रिंग्स थी, और ये आधी आधी रिंग्स हमारे लूप से, करंट कैरिंग लूप से कनेक्टेड थी। तो इन्हीं के थ्रू, और ये जो हाफ रिंग्स थी ये जुड़ी थी हमारे ब्रशेस से। कौन सी ब्रशेस, आपने देखा था यहाँ पर, आप आ जाओ पेज नंबर 232 पर, यहाँ पर देखो फिगर 13.15, यहाँ पर आप एक एक्स रिप्रेजेंट किया हुआ देख रहे हैं और एक वाई रिप्रेजेंट किया देख रहे हैं। ये एक्स और वाई जो है ये आप लोगों को बता रहे हैं कि ब्रशेस है, कंडक्टिंग ब्रशेस। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है सप्लाई से, इलेक्ट्रिसिटी जो आ रही है उसको पहुंचाना है आपके कंडक्टिंग लूप में। तो बेसिकली हमारी जो ब्रशेस हैं ये एक एक जॉइंट का काम करती हैं जो परमानेंट नहीं है। ये ऐसी कंडक्टिंग ब्रशेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी सेंड तो करती हैं एक सेटअप से दूसरे सेटअप में, लेकिन ये परमानेंटली जॉइंट नहीं होती हैं। तो जैसे ही वो टच होगा दूसरा सेटअप हमारे कंडक्टिंग ब्रश से तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो जाएगा, जैसे ही वो टच नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा था कि करंट जो है वो ब्रश एक्स से जब एंटर कर रहा था तो ऐसी सिचुएशन में जो ए बी आर्म के अंदर करंट फ्लो कर रहा था तो उससे फोर्स ए बी पर जो अप्लाई हो रही थी वो कैसी हो रही थी, डाउनवर्ड हो रही थी। तो ए बी के ऊपर फर्स्ट सिचुएशन में जब करंट फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज हमारे लूप के अंदर, ए बी सी डी लूप के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज, तो ए बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो डाउनवर्ड हो रही थी, सी डी के ऊपर अपवर्ड हो रही थी। तो इससे एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट हो रहा था जिसकी वजह से रोटेशन स्टार्ट हो जा रही थी। उसके बाद जैसे ही आधी रोटेशन पूरी हो रही थी तो जो सी डी वाली आर्म है वो अब एक्स वाली ब्रश, कंडक्टिंग ब्रश से टच हो जा रही थी जिसकी वजह से अब करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाता था। तो क्या होता था कि जैसे ही आधी रोटेशन कंप्लीट हुई तो जो फ्लो का डायरेक्शन है, करंट के फ्लो का डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गया, विच हेल्प्स इन कंप्लीट रोटेशन। तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन हो पाता है। और यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज हुआ है वो क्या है, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स एग्जर्ट कराया जाता है। तो अगर फोर्स ऐसा है कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो रहा है एक लूप के ऊपर, लूप के दो एंड्स पर अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट होता है तो उससे टॉर्क बन जाता है। टॉर्क क्या करता है, हमारे लूप को रोटेट कराता है। तो इसी का यूज हम करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर में। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम लोगों को जो आज पढ़ना है वो क्या करना है, हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर के अंदर। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि कोई कंडक्टर जिसके थ्रू करंट पास कर रहा हो अगर उसे हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब ये जो फोर्स है आपके कंडक्टर को मूव करा सकता है। अगर किसी कंडक्टर के ऊपर फोर्स एग्जर्ट हो रहा है तो आपका वो कंडक्टर मूव करने लगेगा। अब आपका जो मूविंग कंडक्टर है ऐसा होता है कि ये मूविंग कंडक्टर मूव होते होते ये क्या करता है कि अगर ये किसी ऐसी जगह पर मूव कर रहा है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है विथ टाइम, टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है, किसी ऐसी जगह पर अगर हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि करंट इंड्यूस हो जाता है। यानी कि किसी ऐसी जगह पर अगर हमारा कंडक्टर मूव करता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलती है तो ऐसे में कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाता है। तो या तो आप ये कहो कि पहले से कोई कंडक्टर रखा था जिसके अंदर करंट पास कर रहा था और उसको हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस हुआ, या फिर आप ये कहो कि कोई कंडक्टर अभी ऐसा रखा है जिसमें अभी करंट नहीं पास कर रहा है। अब हमने उस कंडक्टर को क्या करा, उसको कंडक्टर को हमने मूव करना शुरू कर दिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड जहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ वेरी करती है, वो टाइम के साथ बदलती है। और ऐसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी कंडक्टर को मूव कराओगे तो उस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। तो ये एक करंट जनरेट करने का एक तरीका है, और इसके बारे में सबसे पहले जिस व्यक्ति ने स्टडी करके बताया था वो एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, नाम था उनका माइकल फैराडे। उन्होंने 1831 में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि अगर हम किसी कंडक्टर को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है, एक्टिविटी 13.8 पेज नंबर 233। इसके इस एक्टिविटी से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या आपको बताया जा रहा है। अब यहाँ पर एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको एक कॉइल चाहिए सोलेनॉइड के जैसा, आपका उसको आपने टर्न्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ कुछ टर्न्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 13.16 पेज नंबर 234। यहाँ पर आप देखिए आपके पास एक कॉइल है, इस कॉइल को आपने किसी एक हॉलो इंसुलेटेड पाइप के अराउंड आपने रोल आपने उसको लपेटा है। तो आपने बेसिकली क्या किया है, आपने एक वायर लिया, आप एक कंडक्टिंग वायर ले सकते हैं, और उसको आपने एक इंसुलेटिंग पाइप हॉलो पाइप जैसा कुछ लिया है और उसके अराउंड लपेट दिया है। उसके बाद आपने इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो आपने कॉइल के जो दो एंड्स हैं उसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है। अब आपका ये जो सेटअप है जिसमें आपने एक हॉलो पाइप के अराउंड वायर लपेट के उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है, इसको रखो और अब क्या करो, अपने हाथ में एक बार मैग्नेट ले लो, कॉइल का एक एंड ए मार्क कर दो, एक एंड बी मार्क कर दो। बी वाले एंड से अपने मैग्नेट को कुछ इस तरीके से लाओ कि नॉर्थ पोल जो होगा वो बी वाले एंड को फेस कर रहा होगा, और आप अपने बार मैग्नेट को धीरे धीरे क्लोज लाते जाएंगे आपके बी वाले एंड के पास में। आपका जो कॉइल है उसका जो बी वाला एंड है उसके पास में लाते जाएंगे आप अपने बार मैग्नेट को, और फेस आपका नॉर्थ पोल कर रहा होगा कॉइल के बी वाले एंड को। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 234 पर फिगर 13.16 में किस तरीके से आपके बार मैग्नेट को क्लोजर लाया जा रहा है आपके कॉइल के। आप यहाँ पर एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करेंगे, वो ये होगा कि जैसे जैसे आप अपने बार मैग्नेट को आपके कॉइल के क्लोजर ला रहे हैं आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होगा, और आपका गैल्वेनोमीटर कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, राइट साइड की ओर डिफ्लेक्ट होगा। तो इससे आपको क्या पता चला, इससे आपको पता चला कि गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ करंट की प्रेजेंस को मेजर कर पाता है। इसका मतलब आपने तो कहीं से करंट सप्लाई किया नहीं है अपने कॉइल के अंदर, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने बार मैग्नेट को मोशन दे रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि विथ टाइम आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड द कॉइल इट इज चेंजिंग, जिसकी वजह से आपकी कॉइल के अंदर करंट जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर आपके मैग्नेट को कॉइल के पास लाने से गैल्वेनोमीटर ने आपको राइट साइड में डिफ्लेक्ट होकर के दिखाया। अब क्या करो कि अपनी बार मैग्नेट को स्लोली स्लोली अपने कॉइल से दूर लेकर के जाओ। जब दूर लेकर के जाओगे तो आप ये देखोगे कि आपका गैल्वेनोमीटर सेकेंड सिचुएशन में, जब बार मैग्नेट को दूर लेकर के जा रहे थे कॉइल से, तो इस सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट हुआ। अब तीसरी सिचुएशन, आप अपने बार मैग्नेट को मूव मत करो बिल्कुल, बस पास में ले जाकर के कॉइल के ऐसे ही स्टेशनरी रख दो। तो ऐसे में आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर कहीं नहीं डिफ्लेक्ट होगा, ना लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होगा ना राइट को डिफ्लेक्ट होगा। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि बार मैग्नेट को स्टेशनरी रखने से, एक जगह पर रोक के रख देने से करंट इंड्यूस नहीं होता, तभी इंड्यूस होता है जब आप अपनी बार मैग्नेट को मूव करते हैं। तो ये सिंपल एक्टिविटी आपको ये बताती है कि ऐसी जगह जहां पर मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम अगर वेरी कर रहा है, तो ऐसे में ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, हमारे कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पेज नंबर 234 पर बताया गया है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए अगर पॉइंटर बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल खड़ा रहता है तो उससे आपको ये पता चलता है कि करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट। लेकिन अगर आपका पॉइंटर जो है गैल्वेनोमीटर का, वो या तो लेफ्ट को या राइट को डिफ्लेक्ट होता है, तो उसका मतलब ये है कि आपको वो डायरेक्शन बता रहा है करंट की। अगर वो राइट को डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वो कह रहा है कि राइट की साइड में करंट फ्लो कर रही है। अगर वो लेफ्ट को डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है कि लेफ्ट साइड को करंट फ्लो कर रही है। अगर वो स्ट्रेट रहता है, वर्टिकली स्ट्रेट रहता है, जीरो को पॉइंट करता है, इसका मतलब है कि करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट। एक और आप काम कर सकते हैं इसी एक्टिविटी के अंदर, एक्टिविटी 13.8 के अंदर, और वो आप ये कर सकते हैं कि आप क्या करो कि इस बार अपने मैग्नेट को स्टेशनरी रखो और आप अपनी कॉइल को आगे पीछे मूव करो। यहाँ पर फर्स्ट सिचुएशन में जब आपने मैग्नेट को रोक करके रखा है, एक्टिविटी 13.8 में ही एक थोड़ी सी और अटैच्ड एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, इस बार अपनी मैग्नेट को स्टेशनरी रखना है और आपकी कॉइल जो है उसको मूव करना है। और मूव किस तरीके से करना है, जो एंड बी एंड है आपके कॉइल का उसको आपको मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास में लाना है। मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया है, कॉइल को मूव कर रहे हैं, कॉइल का बी एंड जो है उसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल के करीब ला रहे हैं, पास ला रहे हैं। तो ऐसे में हम देखते हैं कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो किधर को रिफ्लेक्ट होता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, डिफ्लेक्ट होता है राइट साइड को। और अगर आप अपने कॉइल को दूर लेकर के जाते हैं, जो आपके कॉइल का एंड बी है उसे आप नॉर्थ पोल से दूर लेकर के जाते हैं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल से दूर लेकर के जाते हैं, तो ऐसे में गैल्वेनोमीटर जो है वो लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि या तो हम मैग्नेट को मूव कराएं या फिर कॉइल को मूव करें, किसी एक को स्टेशनरी रखेंगे दूसरे को मूव कराएंगे, तो ऐसे में यहाँ पर करंट जो है वो इंड्यूस होता है हमारे कॉइल के अंदर, और सिर्फ तभी इंड्यूस होता है जब मूवमेंट हो रही होती है। अगर स्टेशनरी रखा हुआ है दोनों को तो वहां पर कोई करंट इंड्यूस होकर के नहीं दिखेगी। अब यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, एंड बी के बजाय आप एंड ए जो है आपके कॉइल का वहां पर नॉर्थ पोल लेकर के आइए और देखिए कि गैल्वेनोमीटर किधर को डिफ्लेक्ट होगा। और साथ में या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो कॉइल है उसके एंड बी के पास मैग्नेट का साउथ पोल लेकर के आइए, तब देखिए कि करंट किस तरीके से इंड्यूस होगा। अगर आप अपने कॉइल को स्टेशनरी रखते हुए एंड बी की ओर साउथ पोल लेकर के आएंगे तो ऐसे में गैल्वेनोमीटर कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर हो जाएगा डिफ्लेक्ट लेफ्ट की साइड में। और आप अपने कॉइल को स्टेशनरी रखते हुए एंड बी की ओर साउथ पोल जो है पहले करीब लाएंगे तो क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन देगा, अगर दूर लेकर के जाएंगे साउथ पोल को तो ऐसे में डिफ्लेक्शन जो होगी वो राइट को दिखेगी। तो यहाँ पर आप अलग अलग सिचुएशंस जो हैं वो यूज करके एक्टिविटी को और अच्छे से यूज कर सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा नॉलेज हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को माइकल फैराडे के बारे में थोड़ा सा बताया गया कि माइकल फैराडे जो थे वो एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे। इसका मतलब है कि इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था, इनके पास स्कूल की कोई नॉलेज नहीं थी, स्कूल नहीं गए थे ये कभी भी, गरीब परिवार से थे तो ये कभी भी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन थोड़े बहुत लेक्चर्स कभी कभी अटेंड कर लिया करते थे उन व्यक्तियों के जिनको ये बहुत ज्यादा एडमायर करते थे। जिन व्यक्तियों को ये एडमायर करते थे उनमें से एक थे हम्फ्री डेवी, रॉयल इंस्टीट्यूट में ये पढ़ाते थे, लेक्चरार थे। तो वो लेक्चर जो देते थे, कभी कभी पब्लिक लेक्चर्स देते थे तो उसमें माइकल फैराडे चले जाते थे। तो माइकल फैराडे ने हम्फ्री डेवी का एक लेक्चर सुना और बहुत अच्छे से नोट्स बनाए, नोट्स बना करके इन्होंने, माइकल फैराडे ने डेवी को ही उनके लेक्चर का नोट्स बना करके सेंड कर दिया। डेवी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने माइकल फैराडे को अपना असिस्टेंट बना लिया। उसके बाद माइकल फैराडे ने बहुत मेहनत करके बहुत ज़्यादा स्टडी करके और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में खोज की और लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया। जब माइकल फैराडे ने इतनी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज कर दी तो उसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो थे वो इनको ऑनरी डिग्रीज देना चाहते थे, इनके सम्मान में इनको डिग्री देना चाहते थे, लेकिन फैराडे ने कहा कि मेरी नॉलेज किसी डिग्री की मोहताज नहीं है, मुझे कोई डिग्री नहीं चाहिए, मेरा जो पैशन है वही मुझे हेल्प करेगा कि मैं और ज़्यादा डिस्कवरीज करूँ। तो इस तरीके से माइकल फैराडे ने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक्टिविटी 13.8 किया है, आपको एक्टिविटी 13.9 भी करने के लिए कहा गया है। एक्टिविटी 13.9 इज ऑन पेज नंबर 235। इसके लिए आपको क्या करना है, अब आप लोगों को यहाँ पर दो कॉइल्स लेने हैं। अब आपको क्या करना है, एक मैग्नेट और एक कॉइल नहीं, आपको दो कॉइल्स लेने हैं। ये जो कॉइल है इसे आप खुद भी बना सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आपको बेसिकली एक हॉलो पाइप चाहिए होगी, एक हॉलो पाइप आप ले सकते हैं और उस हॉलो पाइप के चारों ओर आपको वायर लपेटनी है, दो जगहों पर आपको वायर लपेटनी है। आप यहाँ पर पेज नंबर 235 पर फिगर 13.7 देखो, इसमें आपने क्या किया, आपने एक हॉलो पाइप ली है और इस हॉलो पाइप के और चारों ओर आपने वायर लपेटी है। कॉइल वन और कॉइल टू क्या है, बेसिकली आपने वायर लपेटी हुई है कॉपर की। कॉइल वन में जो आपने वायर लपेटी है उसमें आपने मान लो 50 टर्न्स किए हैं और कॉइल 2 में आपने 100 टर्न करा है, यानी कि कॉइल 1 में आपने 50 बारी लपेटा है वायर को और कॉइल 2 में आपने 100 बारी लपेटा है वायर को। तो इस तरीके से अलग अलग नंबर ऑफ टाइम्स आपने लपेटा है तो नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट है कॉइल 1 में और कॉइल 2 में। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दो कॉइल्स बनाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉइल 1 को एक सर्किट से जोड़ देना है जिसमें आपने कॉइल 1 को एक बैटरी से और एक की से जोड़ा हुआ है, लेकिन कॉइल 2 को आपको सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देना है। तो इस तरीके से आपने कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप देख पा रहे होंगे कि कॉइल 1 जो है आपने कॉइल 1 में ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रखने हैं और कॉइल 2 में कम रखने हैं। तो आप क्या करो कि कॉइल 1 में 100 टर्न्स कर दो, 100 बारी जो वायर आपने लपेटी है वो कॉइल 1 रख लो और कॉइल 2 में आप 50 टर्न्स कर दो, 50 बारी लपेटो। तो ज्यादा बारी आपने कॉइल 1 में लपेटा हुआ है और कम बारी आपने कॉइल 2 में लपेटा हुआ है। अब आप क्या करें कि आपने जो कॉइल 1 को लपेटा हुआ है और आपने उसको एक सर्किट से भी जोड़ा हुआ है, यानी कि एक बैटरी से जोड़ा हुआ है, अब उसमें आपने एक प्लग की भी लगाई हुई है। अब क्या करिए कि प्लग की को पहले क्लोज करके रखिए और आपका सेटअप ऐसे करके रखिए कि आपने प्लग की को अभी क्लोज करके रखा हुआ है। प्लग की को क्लोज करके रखेंगे तो आपकी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। अब सडनली प्लग की को ओपन कर दो, यानी कि स्विच ऑफ कर दो, प्लग की को निकाल दो, तो आपने क्या किया है, सडनली आपने करंट जो है वो खत्म कर दिया है, करंट का फ्लो सडनली बंद कर दिया है कॉइल 1 वाले सर्किट के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आप देखोगे कि कॉइल 2 में आपको एक डिफ्लेक्शन दिखेगी। तो ये जो डिफ्लेक्शन आपको कॉइल 2 में दिख रही है ये फटाफट से किसी एक साइड को डिफ्लेक्ट होगी और फटाफट से वापस जीरो पे आ जाएगी। तो ये जो आपको डिफ्लेक्शन दिख रही है इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपने कॉइल 1 के अंदर करंट का फ्लो कराया था जिसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही बदली वैसे ही करंट जैसे ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बदली कॉइल 1 की वजह से वैसे ही कॉइल 2 में मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की वजह से करंट इंड्यूस हो गया, इसीलिए गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई। लेकिन जैसे ही आप वापस से सिचुएशन नॉर्मल कर देते हैं तो हमारा गैल्वेनोमीटर फिर से जीरो को पॉइंट करने लगता है, यानी कि ये बहुत माइन्यूट सेकंड के लिए आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाता है, सिर्फ तभी जब आप फटाक से कोई चेंज करें, या तो प्लग की को ऑन करें या फिर आप उसे क्लोज करें। आप या तो करंट का तुरंत के साथ फ्लो कराएं या फिर फ्लो हो रहा है तो तुरंत के साथ आप उसे ऑफ कर दें, फ्लो बंद करा दें। तो या तो जस्ट तुरंत ही आप फ्लो कराना शुरू कर रहे हैं वैसे ही आपको फिर से गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन दिखेगी, जैसे ही कांस्टेंट करंट हो जाएगा फिर डिफ्लेक्शन दिखनी बंद हो जाएगी। फिर आप अगर कांस्टेंट करंट को तुरंत ऑफ कर रहे होंगे, करंट फ्लो कराना बंद करेंगे, तो जस्ट जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो वैसे ही आपको डिफ्लेक्शन दिखेगी, फिर से कांस्टेंट हो जाएगा सिचुएशन, यानी कि अब सर्किट में करंट बिल्कुल ही नहीं फ्लो कर रही है और ये सिचुएशन कांस्टेंट हो गई है। कुछ देर तक आपने ऐसा ही रखा है कि करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो इस केस में भी आप लोगों को डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। डिफ्लेक्शन सिर्फ तब दिखेगा या तो आप तुरंत अगर करंट फ्लो कर रहा है तो फ्लो कराना जस्ट बंद करेंगे तो उस सिचुएशन में दिखेगी, या फिर करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो जस्ट जैसे ही फ्लो कराने जाएंगे तब दिखेगी डिफ्लेक्शन। उसके साथ भी अनोखी बात ये है कि आप ये देखोगे कि पहली सिचुएशन में जब आपके सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रही थी और आपने जस्ट प्लग को रिमूव किया था, करंट जस्ट फ्लो कराना बंद किया था, तो गैल्वेनोमीटर में जिस दिशा में डिफ्लेक्शन आई थी उसके विपरीत दिशा में डिफ्लेक्शन आती है तब जब आप तुरंत जैसे ही करंट को फ्लो कराना शुरू करते हैं कॉइल के अंदर। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि कॉइल 2 के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है। करंट इंड्यूस तब होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है या करंट इंड्यूस हो रहा है, दोनों में से एक बात कह सकते हैं। तो यहाँ पर कॉइल 2 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो रहा है तब जब कॉइल 1 के अंदर या तो हम करंट का फ्लो जस्ट स्टार्ट करा रहे हैं या फिर जस्ट स्टॉप करा रहे हैं। तो कॉइल 1 के अंदर अगर हम करंट का फ्लो जस्ट स्टार्ट कराएं या जस्ट स्टॉप कराएं तो ये चेंज लाने की वजह से हमको दिखता है कि कॉइल 2 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और करंट जनरेट हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में कॉइल 1 को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, कॉइल 2 को हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। फर्स्ट कॉइल के अंदर करंट का बदलाव आ रहा है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल 1 से एसोसिएटेड है वो भी बदलती है, और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से जो कॉइल टू है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो कॉइल टू में इंड्यूस हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि कॉइल वन में मैग्नेटिक फील्ड बदली थी, जिसकी वजह से कॉइल टू में भी मैग्नेटिक फील्ड बदली, जिसकी वजह से कॉइल टू में मैग्नेटिक फील्ड की बदलने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हुआ और करंट जनरेट हो गया। तो आप ये कह सकते हैं कि कॉइल टू के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव आया जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ और करंट जनरेट हो गया। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव हमें दिखता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का बदलाव हमें दिख रहा है एक कंडक्टर के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव की वजह से दूसरे कंडक्टर के अंदर करंट जनरेट हो जाए, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पर आप लोग पेज नंबर 235 में देख भी सकते हैं, जो ब्लू कलर का बॉक्स दिया है एक्टिविटी 13.9 का, इसके नीचे जो सेकेंड पैराग्राफ है इसमें आप देखो जो लास्ट थ्री लाइन्स हैं, फाइव लाइन्स जो है, फिफ्थ लास्ट लाइन जो है, दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये डेफिनेशन है, इसे नोट करके रख सकते हैं। एक बार और डेफिनेशन बोल रही हूँ, दिस प्रोसेस बाय विच अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस अ करंट इन अनदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की सहायता से करंट इंड्यूस करने का दो तरीका है, या तो आप जो आपका कॉइल है उसे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराइए, या तो आप कॉइल को स्टेशनरी रखिए लेकिन उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को विद टाइम चेंज कराइए। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं करंट को जनरेट कराने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या किया जाता है कि जो हमारा कंडक्टर है उसी को मूव करा देते हैं, उसको मूव करा देते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और उसी से करंट जनरेट करा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में भी पढ़ना है। आप लोग ऑलरेडी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है इससे हमें क्या पता लगता है, इससे हमें पता लगता है कि अगर आप अपनी राइट हैंड को लें, अपनी थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को, तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखना है। थंब के परपेंडिकुलर फोर फिंगर होगा, फोर फिंगर के परपेंडिकुलर मिडिल फिंगर होगा और थंब के परपेंडिकुलर मिडिल फिंगर भी होगा। तो इस तरीके से आपकी फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, और ऐसे में आपका जो मिडिल फिंगर होगा ये क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि किस दिशा में कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हुई है, और आपकी जो फोर फिंगर है वो पॉइंट करेगी उस दिशा में जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है, और आपकी जो थंब है वो पॉइंट करेगी उस दिशा में जिस दिशा में आपका कंडक्टर मूव कर रहा है। तो आपका थंब जो है वो पॉइंट कर रहा है उस दिशा में जिस दिशा में आपका कंडक्टर मूव कर रहा है, आपकी फोर फिंगर पॉइंट कर रही है उस दिशा में जिस दिशा में आपके मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी सिचुएशन में आपकी मिडल फिंगर उस दिशा में पॉइंट करेगी जिस दिशा में कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो आपको करंट इंड्यूस किस दिशा में हुआ है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से पता चल जाता है। यहाँ पर आप लोगों को डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है पेज नंबर 235 पर, फिगर 13.18 फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको बताया गया, इसे भी याद करके रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 236 पर क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। तो ये दो डिफरेंट वेज के बारे में अभी हमने बात की थी। या तो आप क्या करें कि आपके करंट जो कैरिंग कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर अभी करंट नहीं कैरी हो रहा है, उस कंडक्टर को हमने या तो मूव कराना है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या हम उस कंडक्टर को स्टेशनरी रखें और उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को विद टाइम चेंज करें। दोनों में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे कंडक्टर के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक जनरेटर। आप चाहें तो आप लोग पहले से पढ़ के रख सकते हैं, इससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों ने जो अब तक पढ़ लिया है उसे आपको रिवाइज कर लेना है, और इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको अपनी टीचर से पूछना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।